ஓம் சாந்தி, ஓம் சாந்தி. பிரபு மிலனுக்கு ஆனந்தமே. ஓம் ஆனந்த். பாபா மிலா, சப் குச் மிலா, கீத் சுனா, பானா தா சோ பா லியா, ஆர் க்யா பாக்கி ரஹா. பஹுத் குச் பாக்கி ரஹா ஹை. பானா தா சோ பா லியா, காம் க்யா பாக்கி ரஹா. வோ அப்னே ஆப் சே ஹம் பூச்சே, ஜோ மில் கயா, உஸ் மிலே ஹுவே கோ ஹம் ஸ்வயம் கே லியே கித்னா யூஸ் கர் ரஹே ஹை. மிலே ஹுவே கஜானே கோ சிர்ஃப் விசார் கர் ரஹே ஹை. ஜோ பாபா நே கிஃப்ட் தி ஹை, உஸ் கிஃப்ட் தேக் கோ தேக் தேக் கே குஷ் ஹோ ரஹே ஹை. ப்ரெசன்ட் மில்தி ஹை நா தோ குஷ் ஹோதே ஹை. யா ரக் கே சிக்யூரிட்டி ஹோதி ஹை, ஹா பாய் மேரே பாஸ் ஹை. ஜ்ஞான ஹை க்யா மிலா ஹை, பண்டார் பர்பூர் கர் தியா ஹை. ஜ்ஞான சே பி, குணோ சே பி, சக்தியோ சே, வரதானோ சே, பியார் சே, ஹர் பிரகார் சே பர்பூர் கியா ஹை. அபி காம் தோ பஹுத் ரஹா ஹுவா ஹை, க்யோன்கி ஜோ தியா ஹை வோ தோ பாத்தோ கே லியே தியா ஹை. ஜோ பி குச் புரானா கர்ஜா ஹை உஸ்கோ சுகானே கே லியே, துவாபர் சே லேகர் கே ஜோ கர்ம கா ஹிசாப் கிதாப் பனாதே ஆயே, உஸ் கர்மோ கே கதே கோ சுக்து கர்னே கே லியே. ஆர் பவிஷ்ய நயி துன்யா கி ஸ்தாபனா கர்னே கே லியே. ஹம் பாபா நே கா நா தும் மே ஸ்வர்க கி துன்யா கி ஸ்தாபனா அத்வா உத்காடன் அகேலா தோடி கருங்கா. சோலோ வோ தோ ஆகர் கே ரிபன் காட் தேங்கே கெஞ்சி சே, மே தோ யே காம் நீ கர்தா, மே தோ தும்ஹாரே சாத் உத்காடன் கர்னா ஹை நா. யே படா ராயல் தரீகா, ரெஸ்பெக்ட் வாலா தரீகா ஹை, பச்சோ கோ ஆகே ரக் கே. ஆர் ஷிவ் பாபா கேதே ஹை, மே தோ வாஸ்தவ மே பிரபந்த கர்த்தா ஹூ, பாக்கி உத்காடன் தோ ஆப் கர்தே ஹோ. பாபா தோ ஸ்வர்க மே ஜாதா நீ ஹை, தோ பிரம்மா பாபா கே சாத் ஹம் சப் ஜாயேங்கே நா. ஷிவ் பாபா கே சாத் தோ சிர்ஃப் கர் ஜாயேங்கே, பாபா கே சாத் தோ கர் ஜாயேங்கே. பாபா தோ கர் லே ஜானே கே லியே ஆயா ஹை, பரந்து கர் பி லே ஜானே கே லியே ஆயா ஹை. படே ரெஸ்பெக்ட் சே லே ஜானே கே லியே ஆயா ஹை, படே பியார் சே லே ஜானே கே லியே ஆயா ஹை. ஹமாரா ஷ்ரங்கார் கர்க்கே சாத் மே லே ஜானே வாலா ஹை. கையோ ஹமாரா ஷ்ரங்கார் கர்த்தா ஹை, கையோ கா சுதார் கர்த்தா ஹை. தோ ஹம்கோ ஷ்ரங்கார் கி குஷி ஹை கி ஹம் சாத்தி பன் கே ஜாயேங்கே. மேலே கப்படே பன் வாலே பன் கே நீ ஜாயேங்கே, பிரைட் குரூம் கே சாத் சம்கீலி ட்ரெஸ் பன் கர் கே ஜாயேங்கே, மிட்டி வாலி ட்ரெஸ் நீ பன் கே ஜாயேங்கே. பராத்தி ஹோக்கே நீ ஜாயேங்கே, சாத்தி ஹோக்கே ஜாயேங்கே. சாத் தோ சல் காட்டே தோ சல்தே ஹை, பரந்து கை பிச்சாரே பஷ்சாதாப் சே, ஹார் கி கில்டி கான்ஷியஸ் சே, மார் சே, யானி அப்னே ஆப் கா சுதார் அலக் அலக் தரீக்கே சே கர்தே ஹை. பர் பாபா ஹமாரா பியார் சே ஷ்ரங்கார் கர்கே ஹம்கோ சுதார் கர்கே சாத் லே ஜாதே ஹை. तो अभी वो चलने के लिए चल रहे हैं, उड़ रहे हैं और साथ साथ दूसरों को उड़ा रहे हैं, क्योंकि खाली अकेले तो नहीं चलना है ना। राजधानी स्थापन हो रही है, भले राजा के साथ, राजधानी में अनेक राजाएं, महाराजा विश्व महाराजन के साथ, परंतु साथ में रहने वाले संबंधी प्रजा सब साथी चाहिए, तो वो भी उसी क्वालिटी वाले चाहिए। भले उस समय वो स्टेटस कम होता है, परंतु जिस समय हम साथ हैं उस समय क्वालिटी का लेन देन एक जैसा होता है। ये तो जो आत्माएं, जो दास दासियां हैं, उस समय वो भी तो खुश है ना, किसी में दुख की लहर थोड़ी है, किसी में कोई ऐसा फीलिंग हो मैं कम हूं ऐसा तो है ही नहीं। ये तो आत्मा में शक्ति कम भरी है, तो वो जब द्वापर धीरे जैसे सृष्टि का परिवर्तन होता है तो खाली जल्दी हो गई ना, हमने भंडार बहुत इकट्ठा किया शक्ति, जिन्होंने शक्ति ज्यादा भरी उनको धीरे धीरे उनकी शक्ति कम होती है। स्वर्ग में गए पर उसमें भी कोई क्वालिटी ज्यादा अच्छी है तो वो देर से खराब होगी, क्वालिटी यानी नमी चीज है तो नमी तो चमकेगी ना नमे के साथ। तो सब आत्माएं जो देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं वो नमे राज में तो नमी है ना, पुराने को तो छोड़ के गए थे ना, तो नवीनता तो है, कोई ऐसा नहीं है कि वहां कोई ऐसा कॉन्ट्रास्ट हो कि ये बहुत ऊंचा है ये बहुत नीचा है, वो तो आत्मा के अंदर उस समय नवीनता की चमक तो सब में है ना, पर शक्ति कम होने के कारण उसका असर कम हो जाता है। जैसे समझो मानो कोई वेलवेट के पर्दे हैं या फिर जो है चमकीले साधारण मटेरियल के कपड़े हैं, तो वेलवेट का भी लगाओ तो बेशक वो भी अच्छा लग रहा है, पर सुंदर थोड़ी प्लास्टिक का और थोड़े डोरे डाल करके वो रंग बिरंगे वो भी चमकते हैं। आजकल जो शादियां होती हैं तो क्या कपड़ा ही लगाते हैं, प्लास्टिक लगाते हैं, ऐसा लगता है जैसे बड़ा महल तैयार हो गया, परंतु देखने में तो चमक तो है ना, परंतु एक ही तूफान आया, एक थोड़ा सा कुछ हुआ वो फट जल्दी जाएगा ना। और एक पावरफुल चीज है, बिल्डिंग बनी हुई है, कितना भी तूफान आवे कितनी भी आंधी आवे वो प्रोटेक्टेड रहेगा ना। तो ऐसे जब माया की आंधी माया का तूफान आता है, द्वापर में ब्राह्मण का राज शुरू होता है, तो वो क्योंकि कमजोर आत्माएं हैं वो जल्दी फिर दुखी हो जाती है द्वापर कलयुग में। तो इसलिए बाबा कहते सदा काल का राज है, सदा काल सिर्फ सतयुग 21 जन्मों के लिए नहीं, तो उसमें भी संस्कार इतने श्रेष्ठ, जो आत्मा एकदम सतो प्रधान बन करके जावे, सतो वाली स्टेज में जाएंगी तो सतयुग में तो जाएंगी, पर वो प्रधानता वो ताकत नहीं रहेगी ना। एक बारी बाबा के कमरे में बैठे थे, ये बाबा का जो कमरा अभी तो 3 गुना बड़ा है, छोटा ही था इतना, एक दरवाजे से दूसरा दरवाजे तक जहाँ छोटी एक कुर्सी रखी है बस वो, और इस डोर का इतना ही दरवाजा कमरा था बाबा का बैग, अभी जहाँ बाबा का चित्र है वहाँ एक दरवाजा था मामा के रूम में जाने का, जहाँ बाबा की गद्दी है वो वहीं पर ही थी, और हम बच्चे बैठते थे बस इतनी सी जगह पर, बीच की जो जगह थी, छोटा सा टेबल था बाबा का ब्रेकफास्ट का साइज का, एक छोटी कुर्सी। तो जब 8 का ग्रुप था सहारनपुर से, मैं समझती हूँ आया हुआ ग्रुप था, तो वो चिट चल रहे थे, तो हमको उस समय तो परिवार छोटा छोटा परिवार, सुखी परिवार, प्यार भरा संसार ना। तो जब वो भी आते जाते चलते फिरते जाके देखे झांक के देख लेते थे बाबा क्या कर रहे हैं, बाबा किसके साथ बैठे हैं, कुछ भी हो मतलब कोई ये नहीं था परमिशन लेने की बात है, बाबा है बस बच्चे चले जाएंगे, कुछ उमंग बहुत थी। तो ऐसे ही हमने झांक के देखा तो कमरा तो फुल ही था, आओ बच्ची आओ। मैंने कहा नहीं बाबा, बस मैं ऐसे ही आई थी, ऐसे ही आई थी। कहाँ बच्ची, ऐसे ही आई थी, आ जाओ आ जाओ। तो बैठने की जगह तो थी नहीं, तो मैंने थोड़ा हेजिटेट किया। कहा आओ बच्ची यहाँ बैठ जाओ। तो जो बाबा का बेड है, अभी बाबा तो नीचे बैठे हैं गद्दी पर। कहा बच्चे तुम यहाँ बैठ जाओ। उस समय थोड़ा बेड लंबा भी था एक्चुअली, अभी तो पावे काट दिए हैं बीच में, जो बाबा लंबे थे ना, तो वो जो बाबा जो खटिया की लेग्स हैं वो लंबी थी, ये तो काट के चार पाई की छोटी कम कर दिए। तो हम आधा खड़े आधा स्टैंड ऐसे समझो कॉर्नर पर रह बैठे। उन्होंने प्रश्न पूछा, हे बाबा जब ये विनाश का समय होगा तो सारी आत्माएं स्वच्छ होके ही जाएंगी ना, उनके पाप धोके ही जाएंगे, कभी कर्मों का विनाश होगा, आत्मा पवित्र बन जाएगी तभी तो जाएगी ना। आपने कहा ना वो तो पावन पवित्र दुनिया है, पावन हमें भूए बगैर नहीं वापस जा सकते, तो पावन होएंगे तभी तो जाएंगे। तो फिर जब पावन हो गए तो वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवे, वो भी तो स्वर्ग में आने चाहिए ना। तो कि बाबा तो स्वर्ग का रचता है, तो सब बच्चों को उसका सुख मिलना चाहिए। बाबा ने मेरी तरफ देख के कहा, बच्ची जवाब देगी आपके प्रश्न का। मैंने कहा बाबा प्रश्न आपसे पूछा है। प्रश्न आपसे पूछा, कहा बच्ची, फिर बड़े प्यार से कहा बच्ची, बाबा कहते हैं बच्ची जवाब देगी। अभी बाबा को ना भी नहीं कर सकते, और बाबा के सामने ज्ञान सुनावे वो भी नहीं, इतना तो नहीं निकलेगा ज्ञान, यानी सार में ही निकलेगा मुख से अंदर। भले बाबा ने जो समझ दिया वो थी तो क्लियर, उस दिन धोबी घाट था, धोबी घाट बाबा यहाँ यही जहाँ पांडव यही पर ही, आपके बड़े किचन में जाओ ना तो लेफ्ट हैंड साइड पर भट्टी चढ़ती थी धोबी घाट। जैसे बाबा भी कपड़े धुलवाने में मदद कराते थे बच्चों को उत्साह भरने के लिए। तो हमने कहा बाबा ये धोबी घाट था ना, तो लट्ठे की चादरें भी थी, तो कपड़ों पर्दे के भी थे, रजाइयों के कवर भी थे, सब मटेरियल सब धुला, धुलाई हो गया, सफाई तो हो गई, सारे साफ हो गए, परंतु लट्ठा लट्ठा ही रहा, खदर खदर ही रहा, मलमल पापलिन मलमल पापलिन ही रही, उनकी कोई क्वालिटी तो नहीं बदली, साफ तो हो गए। तो ऐसे ही जो ये सारी मनुष्य आत्माएं ये वैरायटी ड्रेस पहने हुए जो भी हैं, उनके जो कर्म के हिसाब किताब में साफ तो हो गए, स्वच्छ हो गए, परंतु शुद्ध पवित्र ये तो आपकी याद से, बाबा की याद से हम शुद्ध भी बनते हैं, पवित्र भी बनते हैं, स्वच्छ हो गए। तो वो आत्माएं शक्ति तो उन्होंने मानी, शुद्ध पवित्रता के बल से सुख और शांति होती है। तो वो आत्माएं तो शांति धाम में ही जाएंगी ना फिर, क्योंकि पवित्रता की शक्ति तो नहीं है ना। तो हमने ऐसा कह करके जरूर वो फिर सुख धाम के लायक नहीं, लायक नहीं बनी है ना। तो हमने तो लॉजिक का जवाब दिया, लायक बनेंगे तब तो जाएंगे। बाबा ने कहा ये राइट उत्तर है। फिर बाबा ने कहा देखो, संस्कार अनुसार जन्म होता है, तो इन आत्माओं के जो संस्कार जो है वो आत्माएं और संस्कार कर्म से बदलती हैं। कर्म श्रेष्ठ करने से खुशी होती है, तो भले उन्होंने मार से या पश्चाताप से या अंत में परमात्मा की रियलाइजेशन से, ओ प्रभु लीला आप आए हमने नहीं पहचाना, अंदर प्यार भी जागृत हुआ, पश्चाताप भी हुआ तो प्यार भी हुआ, और उससे उनके अपने पश्चाताप अथवा परमात्म प्यार से चलो स्वच्छ साफ हो गए। एक तो उन आत्माओं के अंदर लक्ष्य यही है कि मुक्ति धाम में जाना है, तो जो उनकी मनोकामना है वो कामना बाबा पूरा करते हैं। दूसरी बात है कि अभी तुम बच्चों के अंदर बाबा न केवल ये पाप कर्म को रियलाइज करा रहे हैं, परंतु रियलाइज करा करके परिवर्तन करा रहे हैं। कई मनुष्य आत्माएं रियलाइज करती हैं, वो पश्चाताप करती हैं और पश्चाताप में दुखी होती रहती हैं, पर परिवर्तन नहीं करती, इसलिए खुशी नहीं होती। पश्चाताप तो हुआ, बीमारी की जी नब्ज तो फील कर ली, रिकग्नाइज तो हो गई बीमारी, डायग्नोज तो हो गई, पर अगर इलाज नहीं किया तो दुख तो दर्द नहीं हो, दूर नहीं, दूर नहीं होगा ना। तो उन्होंने रियलाइज तो किया परंतु उसकी दवाई तो नहीं की, तो छूट गए परम धाम में, तो कोई दुख है नहीं, आत्मा तो न्यारी हो गई। कर्म का हिसाब किताब कर्म करके ही चुक्त होगा ना, श्रेष्ठ कर्म करके ही चुक्त होगा। उसमें के लिए चाहिए गुणों की शक्ति, खाली ज्ञान नहीं हो तो ज्ञान हुआ ना उनको, हाँ हमने रॉन्ग किया। खाली ज्ञान काम नहीं करता, वो तो समझो एक पैच, परंतु ज्ञान के साथ उसका फिर यूज करने की बात है ना। तो तुम बच्चे फिर योग बल से और गुणों से जो अपने में परिवर्तन करते हो, वो शुद्धि आती जाती है ना, आत्मा शुद्ध बनती जाती है, उसका मैल निकलता चला जाता है। तो तुमको श्रेष्ठ कर्म की खुशी है, ज्ञान भी है, ज्ञान दान भी करते हो, दूसरों का कल्याण भी करते हो, तो तुमको दुआएं मिलती हैं, वो पश्चाताप से जाती हैं, परमात्म कृपा से वापस जाती हैं। तो तुम तो दुआएं लेकर के भी जाते हो, पुण्य का काम करके जाते हो, पाप खत्म हुआ पर पुण्य का काम तो नहीं हुआ। तो ये दान करते, ज्ञान दान करके, गुणों का दान करके पुण्य आत्मा बन के जाते हो और योग से पवित्र बन करके जाते हो। तो समझ में आया, यानी ये जो है बाबा ने उसके और क्लैरिफाई किया ना, स्वच्छता है, शुद्धता है, पवित्रता है, वो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार खुशी के। अच्छा, बाकी धर्म वाली आत्माएं दुख के संस्कार ही हैं, समझो उनको मोक्ष चाहिए, चाहे बुद्ध, ये मैं अभी थोड़ा विस्तार दे रही हूँ, समझा रही हूँ कि अगर उस धर्म की आत्मा को देखो, बौद्ध धर्म की आत्मा को, तो मोक्ष तो चाहिए परंतु वैराग है, पर बेशक अहिंसा की भावना है, परंतु मोक्ष ही चाहिए, इस संसार में आना ही नहीं है। संन्यास धर्म वाले भी ऐसे ही, क्रिश्चियन धर्म में हमेशा क्रॉस को ही याद करेंगे, दुख की बातें ही याद करेंगे। एक देवता धर्म वाली आत्मा के अंदर ही खुशी है, आनंद है, प्रेम की लहर है, मौज है, वो खुशी के संस्कार हैं। तो हम अपने जो खुशी के संस्कार हैं उनको लेकर के सत्युग में जाते हैं, खुशी है पवित्रता के बल से, क्योंकि उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वयं पवित्र अपनी इच्छा से बने हैं, समय ने नहीं पवित्र बनाया, समय ने स्वच्छ नहीं बनाया, समय से पहले बाबा हमको, तो इसलिए संगम युग ये पुरुषोत्तम बनने का युग है, हम उत्तम पुरुष बन के जाते हैं। वो पाप आत्मा से पाप कर्म उनके छूट गए, खत्म हुए पश्चाताप से, तो हम आत्माएं जो अपने इतने ऊंचे संस्कार, इसीलिए हम लक्ष्य बाबा देते हैं, बार बार लक्ष्य है, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। यानी फिर थोड़ा और विस्तार अभी समझने की बात है, मैं विस्तार फिर दे रही हूँ जो कि वो तो आत्माओं के पास लक्ष्य है मर्ज हो जाने का, तो बनने की तो कुछ बात ही नहीं, प्राप्त करने की कोई लक्ष्य नहीं है, वापस ना आने का लक्ष्य है। और हमारे को बाबा बार बार लक्ष्य दे रहे हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का, इसलिए लक्षण जो हैं और लक्ष्य एक समान होने चाहिए, और उसमें कर्म करके कर्म करते दृढ़ता चाहिए, और जो पुरुषार्थ किया उसकी प्रारब्ध है, तो उनको पुरुषार्थ का समय तो नहीं मिला। चलो रियलाइज भी किया, पुरुषार्थ करे तो संस्कार बने, संस्कार सुख का बने तो सुख की दुनिया में आवे। तो फर्क है, यानी सम्मान से पवित्रता के बल से वापस जाना और पश्चाताप के आधार से स्वच्छ होकर के या पवित्र बन करके घर जाना, फिर उस अनुसार वो पवित्र दुनिया, क्योंकि यहाँ पवित्र संस्कार बनाए हैं, सुख के संस्कार बनाए हैं, अच्छे संस्कारों का लेन देन, गुणों का व्यवहार व्यवहार में आया है, तो वो ही जब प्रकृति सतो प्रधान बनती है, जिन कर्म इंद्रियों से शुद्ध कर्म किया है, यज्ञ सेवा की है, अरवानियत की दृष्टि से आत्मा को आत्मिक दृष्टि भाव से देखा है, गुणों का लेन देन किया है, तो वो ही फिर प्रकृति, ये प्रकृति शुद्ध हुई है ना, गुणों के यूज से, शक्तियों के यूज से ये पवित्र अथवा शरीर की प्रकृति अंग भी शुद्ध होते हैं, तो प्रकृति से भी तुम्हारा कनेक्शन वो बड़ा ऊंचा हो जाता है। तो जब सतयुग में प्रकृति पवित्र है तो फिर तुम्हारा शरीर भी पवित्र होता है, न केवल आत्मा पवित्र परंतु अभी शरीर भी, जब जितना श्रेष्ठ कर्म करें और अपने जीवन में नियम मर्यादाओं का पालन करते हैं तो स्वच्छ बनते जाते हैं ना, और मैले नहीं होते। योग बल से फिर भी कर्म भस्म भी होते हैं। तो ये फिलॉसफी इस समय हमको पता है कि सुख का राज पाने के लिए चारों ही सब्जेक्ट की प्रैक्टिस चाहिए। उनके पास चारों सब्जेक्ट की पढ़ने की प्रैक्टिस नहीं, ना लक्ष्य था, लक्ष्य नहीं है तो लक्षण नहीं है, तो अंत मत सागति, अंत की जो मत है, बुद्धि में जो भाव संकल्प है अथवा समझ है, उस अनुसार उनको गति, परंतु सतगुरु से सदगति हम बच्चों को मिलती है, सत ज्ञान से सदगति मिलती है, कि हम लीन तो होते ही नहीं, फिर भी आत्मा को आना तो है, भले मुक्ति में चले भी गए फिर भी आएंगे तो जरूर। तो हम तो ये अभी इसीलिए ना केवल खुद जाना है परंतु बाकी आत्माएं जो भटक रही हैं उनको भी रास्ता दिखाना है, जो बंधन में है उनको भी अपने संग दे करके, उत्साह उमंग दिला करके, हिम्मत और उल्लास दिला के उनको भी तैयार करना है। जैसे आज बाबा ने कहा, उनको बताओ भगवान क्या देने के लिए आए। तो ऐसे ही बाबा के समय प्रति समय बहुत प्रेरणा वाले महावाक्य होते थे अथवा प्रेरणा वाली शिक्षाएं होती थी, छोटी छोटी बात में भी, विशेष ऐसे जैसे बाबा रत्नों से खेल रहे हैं, रत्न ही दे रहे हैं। मेरा बाबा से, साकार बाबा से भी हमको बहुत सुंदर सुंदर वरदान मिले हैं, और अव्यक्त मास आ रहा है तो अव्यक्त बाप दादा से भी बहुत सुंदर वरदान मिले हैं। साकार बाबा के साथ भी बहुत 12 साल साथ बेशक रहने का नहीं, ऐसे नहीं है सारा समय मधुबन में रहे, ज्यादा समय बाबा नहीं रहने देते थे। हम दिल्ली में पहले थे तो जब म्यूजियम खुला 60s में तो बाबा ने टेलीग्राम भेजा, बच्ची जयपुर जाओ। मैं पहला म्यूजियम खुला था, बहुत शौक था बाबा को हठ योग और राजयोग के कंट्रास्ट से, तो बाबा ने जयपुर में भेजा था। तो हम जयपुर से अच्छे भाई बहन तैयार होते थे, म्यूजियम था, पहली चीज थी, नवीनता थी, हमारे पास भी उमंग उत्साह बहुत अच्छा था सेवा का, और लोगों को भी म्यूजियम है तो नेचुरली एक क्यूरियोसिटी होती थी, बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण भी देते थे। तो जब बाबा के बच्चे तैयार हो जाते थे तो जल्दी ले आते थे, तो थोड़े समय के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आ जाते थे। तो 2-4 दिन के बाद बाबा कहते थे, बच्ची कब जा रही हो। मैं ये बता रही कि यहाँ रहे नहीं हैं 12 साल बाबा के साथ, परंतु थोड़ा ही समय रहे, पर थोड़े समय में बहुत कुछ बाबा दे देते थे। तो बच्ची यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो कहाँ सेवा पर भेज दिया जाए, वापस कोई कार्य है कुछ प्रोग्राम है तो वापस चले जाते थे जल्दी। एक बारी मैंने बाबा को कहा, बाबा आप 4-5 दिन के बाद आप पूछते हो बच्ची कब जा रही हो, जो बाकी सब आते हैं वो 8 दिन रहते हैं, 10 दिन रहते हैं, कोई 15 दिन भी रहते हैं, मेरे लिए यहाँ जगह नहीं है क्या? 4 दिन के बाद आप कहते बच्ची कब जा रही हो। तो बाबा ने कहा, बच्ची सागर पर बादल भर जाते हैं ना, वो जाकर के बरसते हैं, फिर वो सागर पर ऊपर नहीं रहते, वो चले जाते हैं, वो बरसते हैं, बरस करके फिर आ जाते हैं। तो बाबा ने जैसे ये एक ज्ञान बादल बाबा से भर लिया, अब भर लिया बरस के फिर आ जाओ। तो वो बाबा का वो जो लक्ष्य था उस समय तो हम समझते थे चलो गए वापस जयपुर गए या दिल्ली गए या किसी और स्थान पर सेवा पर गए, बरस के वापस आ गए, पर ये पता नहीं था कि इतना ऊंचा देश विदेश में इतने स्थानों पर बाबा से जो भर के जाते हैं वो जाकर के बरसना होगा और बरस करके फिर आना होगा। तो अभी तो विदेश से भी ऐसे कितने देशों में, कोई अभी तो बहुत देशों में जाना हुआ ना, कोई 130 देशों में अपने बाबा के स्थान है, 100 देशों में तो गए होंगे। तो कितना ये बरस के फिर आ जाओ, बरस के आ जाओ। और कोई ज्यादा दिन रहने का, पहले तो शुरू शुरू में जब विदेश में गए थे तो तब तो कहाँ पर भी जाते थे, तो गए तो 1 महीने की का रहने का, ट्रेनिंग देने का, 2 महीना अच्छी तरह से रह करके फाउंडेशन को मजबूत करने का, नवों को जो तैयार हुए उनको संग दे करके उनको धारणाएं क्या है, खान पान की मर्यादाएं क्या है, ज्ञान की गहराई क्या है, वो फिर भी समय होता था उनको कुछ अच्छी तरह से यानी फाउंडेशन को मजबूत करने का। अभी तो सेवा जब बढ़ गई है तो एक कंट्री में 10 स्थान मानो है, एक एक दिन जाके रहे, 4 दिन के लिए गए एक स्थान में, एक ही कंट्री एक शहर से दूसरे शहर में फ्लाइट में गए, सुबह का क्लास एक जगह कराया, शाम का क्लास दूसरी जगह कराया, या शाम को गए पब्लिक प्रोग्राम हुआ, सवेरे ब्राह्मणों का प्रोग्राम हुआ, दिन में VIP का प्रोग्राम हुआ, सिर्फ बरस के ही आ गए ना। तो बाबा के उसमें कितना वो भरा हुआ था, तो एक शब्दों में बाबा के पास भविष्य की प्लान थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि उस समय भी 12 साल चाहे बाबा के साथ रहे तो साथ नहीं रहे, परंतु वो साथ का अनुभव बड़ा पावरफुल कि जब जब भी आए, बाबा दिल्ली में भी बीच बीच में पहले तो आते थे, लास्ट के कुछ साल नहीं आए, नहीं तो दिल्ली में बॉम्बे में पंजाब में बाबा चक्कर लगाए हैं। तो फिर ये अव्यक्त बाबा का मैं बता रही हूँ। हाँ उस समय फिर बाबा ने ही हमको ये कहा था, मैं जब लास्ट में आई जयपुर से ही आई थी, और वो भी बाबा की एक वंडरफुल कहानी है, बाबा ने फिर हमको वापस दिल्ली में ही भेजा था जब बाबा अव्यक्त हुए। तो जब हम दिल्ली से आए थे तो दिल्ली में तो क्लास बहुत बड़ा था, और ये स्थापना का समय था जयपुर में, क्लास सेंटर्स तो पहले थे परंतु म्यूजियम की तो जैसे पहली सर्विस थी। तो दिल्ली वाले थोड़े समय के बाद कहा, बाबा अभी सुदेश को वापस भेजो। तो बाबा ने उनको कहा कि दिल्ली में तो ये घोड़े पर बैठी थी, अभी तो हाथी पर बैठी है, हाथी से उतार के घोड़े पर थोड़ी भेजूंगा, शेर तैयार करो। अभी देखो बाबा की भाषा, तो घोड़े पर बैठी थी, अभी हाथी पर बैठी है, अभी शेर तैयार करो। तो कोई वैसे शब्दों में ले वे, तो कोई घोड़े पर तो नहीं चलते, परंतु सर्विस ये थी कि जहां पर भी जरूरत है, प्रदर्शनी है या म्यूजियम या कोई शिवरात्रि का त्योहार है, होली का त्योहार है, उस वक्त तो त्योहारों पर ही जोर होता था। उस समय की जो सेवा थी ना, या तो प्रदर्शनी या फिर बहुत अच्छी तरह से मंदिर में जाके प्रोग्राम करो, शिवरात्रि के प्रोग्राम बहुत अच्छे अच्छे करो, होली के प्रोग्राम करो, प्रभात से ही निकालो बड़े उमंग उत्साह से। उस समय की सेवा कुछ अपने ढंग की एक यूनिटी की बहुत बड़ी उत्साह उमंग वाली होती थी। दिल्ली में वहां पर हरिद्वार में जाकर के प्रदर्शनी करो, ऋषिकेश में प्रदर्शनी करो, ऐसे जगह जगह तीर्थों पर जाके सेवा करो। तो घोड़े पर ही बैठे थे, समझो मतलब एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहो। अभी तो हाथी पर बैठी है। तो ये जो सर्विस थी, ये फिर मिनिस्टर्स की, बाबा कहते थे राजाओं को बुलाओ, आसपास के जो बीकानेर के राजा है या मेवाड़ का राजा है, ये जो एक्स जो राजाएं थे, और बराबर उनको निमंत्रण दे के राजाएं जो ओल्ड थे, मतलब पहले राजाएं थे, तो कोई निमंत्रण से बहुत शौक से विशेष कोई विशेष चीज है तो देखने के लिए भी आते थे। तो बाबा फिर लिख के भेजते थे, क्या उनको समझाओ, पहले कौन से चित्र के सामने लेकर के जाओ। तो बाबा की ट्रेनिंग जो थी ना, सिर्फ कोई सेवा की बात नहीं थी, परंतु बाबा की ट्रेनिंग थी कि किस तरह से उनको क्या समझाओ। ऑर्डिनरी लोग आते हैं तो उनको क्या समझाओ, ये जो रॉयल घराने के आते हैं तो उनको याद कराओ कि देखो जो राजाई है आपके घराने की, राजाई से भी पहले राजाई क्या थी, वो भारत का जो विश्व का राज था उसकी विशेषता क्या थी, वो कैसे डबल सीट राज थे, वहाँ पवित्रता सुख शांति का राज्य था, एकता थी, यानी ये स्वर्ग के नजारा दिखा के फिर बताओ। ये भी आपका भाग्य है कि आप समझो इसमें आए, परंतु उसमें भी दो प्रकार की राजाई प्राप्त होती है, एक तन मन धन जन प्रकृति संबंध सब सुख का होता है, फिर राजाई होती है तो संपत्ति तो होती है पर चरित्र नहीं होता है, या हेल्थ नहीं होती है, या संबंध का सुख नहीं होता है। यानी ये बाबा ज्ञान वही चक्कर का देना है, पर बाबा इतने तरीके से सीढ़ी के चित्र पर ही खड़ा करके, ये आपकी कहानी है। तो पूर्वजों के पूर्वज कौन होंगे, राजाओं के राजा ही कौन होंगे, राजाओं के महाराजा ही कौन होंगे, ये राजाएं भी किसकी पूजा करते हैं। तो बाबा एक ट्रेनिंग देते थे, मुरली भी भेजते, मतलब मुरली में ही समझाते थे, और कभी कभी फिर पत्र में भी लिख के भेजते थे। कभी फिर हमको कहते थे, बच्ची तुमने क्या समझाया, कोर्स दिया तो कौन सी बात किस सब्जेक्ट में समझाई, वो लिख के भेजो। वो फिर यहाँ किसको कहते थे, पढ़ के सुनाओ, फिर हमको करेक्शन भेजते थे। तो बाबा जो है वो कितना अटेंशन से, यानी पालना करनी है, अटेंशन देना है, सिखाना है, ताकि एक्यूरेट समझ में आएगा, तब तो एक्यूरेट समझा सकेंगे। उस नशे और खुशी से निश्चय से समझावा होगा तब तो सुना सकेंगे, समझा सकेंगे। तभी बाबा ने कहा ना, बहरे और गूंगे कौन है, सुना था ना कल, बहरे कौन है गूंगे कौन है, सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं तो सुना और सुन के ना तो बहरे हो गए ना, सुन लिया धारण नहीं किया तो उमंग उत्साह कहाँ से आएगा बोलने का, तो गूंगे हो गए ना। तो बाबा ने कहा ज्ञान तो सुनो, ज्ञान सुनाओ, बोलो, हाँ बाकी क्या नहीं बोलो, बंदर नहीं बनो। तो बंदर बन गए थे तो बुरा बोलते थे, बुरा सुनते थे, बुरा देखते थे, अब वो नहीं बनो, अब बच्चे बन जाओ तो रतन बन जाओ, रूप बसंत बन जाओ, बहरे गूंगे नहीं बनो। तो अभी वो बाबा के शब्दों में ही तो ये, फिर अच्छा हाथी पर सवार हो गए, अभी घोड़े पर, अभी शेर तैयार करो। तो बाबा का मतलब था कि ये बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, उनकी सेवा होनी चाहिए, इस प्रकार की सेवा हो। तो फिर जब दिल्ली में म्यूजियम तैयार हुआ तो उन्होंने उनको मालूम पड़ा हम यहाँ आए हैं। हिस्ट्री हॉल में मैं आकर के पहुंची तो मैं हमको यही होता था सवेरे की ट्रेन लेते थे ताकि बाबा की मुरली सुन सके, तो थोड़ा लेट हो गई थी ट्रेन, तो मैं पीछे के दरवाजे से सेकंड दरवाजे से आई। बाबा ने कहा मेरी महारथी बच्ची आई है, मेरा रियल गुलाब आया है, बहुत बहुत सारी मेहमान करते, आओ बच्ची आओ। अच्छा पीछे बैठी थी, पीछे से आगे बिठाया, मैं आगे आके बैठी, मैं बिल्कुल सामने, दीदी जी बिल्कुल दीदी, दीदी मनमोहन जी ने जी बहुत फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, नोट्स लेती थी कॉपी में, क्वेश्चन आंसर तैयार करते थे, तो दीदी तो हमारी मदर थी, यानी ज्ञान में हमको पालना देने वाली दीदी जी थी दिल्ली में। तब तो मैं आके बैठी, बाबा ने कहा नहीं 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 यहाँ मामा की सीट पे आके बैठो। वहां बैठाया, बहुत वरदानों की वर्षा की कि ये बच्ची विदेश जाएगी, अनेकों को लाखों को करोड़ों को संदेश देगी। विदेश क्या होता है तो पता भी नहीं था समझा था भाई इंग्लैंड अमेरिका जापान बस ये कंट्री होगी, इतनी सारे देशों में विदेश में जाना होगा, ये बाबा हमारी जन्म पत्री को जानता है मेरा। अच्छा नहीं 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 बाबा के बहुत वारिस बच्चे तैयार करेगी, अब ये बाबा का वरदान। सो उसमें ना पता भी नहीं था, इंग्लिश बोलने की तो प्रैक्टिस बिल्कुल थी भी नहीं, तो बाबा अपने वरदान भर करके समझो, यहाँ भारत में तो भले बीए तक पढ़ भी लो, एजुकेशन तो हमारे पास थी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की एजुकेशन तो थी, यूनिवर्सल नॉलेज यूनिवर्सिटी का भी ये भी ज्ञान था, परंतु तो इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस तो नहीं थी, पर बाबा का वरदान था तो फिर सहज हो गया सब। अब तो कितने देशों में हर जगह भाषा भी अलग, परंतु तो बाबा अपना कार्य करा रहे हैं। तो ये बाबा का वरदान था, विजन था, आत्मा के अंदर वो शक्ति भरने का बाबा ने उस शब्दों में बोल दिया, तो फिर जिस समय 74 में जाना हुआ तो उसी संकल्प से बाबा ने कहा है फिर जाना है गए। तो विदेश में गए, अभी इसके बाद तो और लंबी कहानी है, परंतु मुझे एक अव्यक्त बाबा की बात भी सुनानी है, इसीलिए मैं ये कहानी यही पूरी करती हूँ। यानी विदेश जो हमारा जाना हुआ ये भी बाबा की प्रेरणा से जाना हुआ, पर उस समय कोई विदेश में सेंटर नहीं था। हाँ बाकी कॉन्टेक्ट थे, अमेरिका में मुरली जाती थी, इंग्लैंड में मुरली जाती थी, साइगन में मुरली जाती, 5-6 स्थानों पर मुरली जाती थी उस समय भी, कोई कोई बाबा के बच्चे हांगकांग में भी थे, तो ऐसे जाती थी मुरली, परंतु एक दो बच्चे थे इंग्लैंड में भी थे। तो पर सेवा केंद्र कोई नहीं था, तो सेवा केंद्र तो फिर 71 में जब ये 5 का ग्रुप गया, उसके बाद भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्होंने चक्कर लगाया और लंदन में पहला सेंटर खुला। उसमें फिर 74 में दादी जानकी जी और हम वहां पर गए लंदन में, फिर से तो वहां से लंदन से फिर अनेक स्थानों पर, जयंती बहन का परिवार तो वहां था, जयंती बहन भी थी, दादी को ही लेके गई थी फिर यहाँ से, जब आई थी तो बाबा के अव्यक्त होने पर जयंती बहन तो इंडिया में ही थी, फिर बाप फिर जो जाने का प्रोग्राम हुआ तो मतलब विदेश में सेवा के निमित्त फिर वहीं ठहरे, और उसी बीच में फिर बहुत स्थानों पर बीच बीच में जाना होता था। तो विदेश की सेवा के बाद जब हम विदेश में गए 74 में, तो क्योंकि वहां रहने का था, अगर वीजा लेना है जिसको ग्रीन कार्ड कहते हैं, परमानेंट अगर रहना है तो कुछ समय रहना पड़ता था, 4-5 साल, तो 4 साल तक हम नहीं आ सके। पर इतना अच्छा कनेक्शन मधुबन से था, फोन से पत्र से, दीदी जी हमेशा कुछ रोज का समाचार भेजते थे, दादी जी शांतामणि दादी रोज नोट्स लिखती थी जो भी यहाँ का प्रोग्राम चल रहा है, क्लासेस चल रही थी, ऐसे नहीं लगता था। पोस्ट रोज जाती थी, तो हर समझो हर हफ्ते में पोस्ट मिल जाती थी। और वो रोज हमारा नियम था दादी जान की 11 बजे जो हमारे पास पोस्ट मधुबन से जाती थी वो पढ़ के सुनाती थी। तो ऐसा नहीं लगता था कि हम दूर हैं, परंतु फिर भी जो सन्मुख मिलने का है, जैसे आज बाबा ने कहा ना, बेशक मुरली टेप पर भी सुन लेते हैं, परंतु फिर भी जो सन्मुख सुनने का आनंद है, जो सन्मुख सुनने का आनंद है वो तो कुछ और है, इसलिए बच्चे सन्मुख आते हैं। तो लास्ट बात ये ट्रैफिक कंट्रोल से पहले अव्यक्त मिलन की बात बताती हूँ, यानी वही जो साकार बाबा का मिलने का, वो अव्यक्त में भी बाबा के पास वही लहर थी हमारे। जब भी बाबा से हम मिले, अव्यक्त में भी भिन्न भिन्न वरदान मिले, पर ये पहला दूसरा एक्चुअली, एक तो अव्यक्त होने के तीसरा जब बाबा का 21st का था तभी, परंतु दूसरा ये पहले विदेश से जब मैं आई हूँ, तो उस समय जब हमारा वीजा का फाइनल हो गया तो हम आ सकते थे, तो दादी जानकी का पासपोर्ट यानी एक्सपायर होने वाला था, तो 6 महीने का वीजा चाहिए, नहीं तो नए पासपोर्ट में स्टैंप नहीं है, इसीलिए पुराना खत्म हो जाता है। तो दादी जानकी ने कहा कि आप क्यों रुको, आप तो जाओ। वकील कहता है थोड़े दिन के बाद पासपोर्ट मिल जाएगा, तो हम थोड़े दिन के बाद आ जाएंगे, आप जाओ। तो हम जब आए तो देखो कितना सुंदर सौभाग्य है, ये भी संबंध है, ये भी मुझे बहुत नशा रहता है इस बात का। तो जब मैं आई तो उस दिन अव्यक्त बाप दादा का विशेष आना हुआ, जैसे दादी जी ने दीदी जी ने ऐसा कुछ प्रोग्राम ड्रामा अनुसार बनाया था, कुछ बिजनेस की बात भी होगी, पर जैसे बाबा हमारे लिए विशेष आए, बाबा के कमरे में बाबा से मिलन हुआ। अब ऐसे सबके साथ नहीं था, पर्सनल मिलना था, बाबा के कमरे में मिली। बाबा वैसे गद्दी पर बैठे हैं और मैं ऐसे मिली हूँ। तो बाबा ने कहा, मैंने कहा, बाबा जरूर कुछ हमारे में संबंध में दूरी होगी ना, इतना बिछड़ गए हम, 4 साल 5 साल 4 साल आना ही नहीं हुआ, कहां मैं इतना जल्दी जल्दी आ जाती थी, अभी तो कितना लंबा बिछोड़ा हो गया। बाबा ने बड़े प्यार से दृष्टि देते कहा, बच्ची वही साकार वाले जैसे शब्द थे, सागर की लहर हाई टाइड होती है ना, वो उछल के बहुत दूर तक जाती है, और जो सागर के बाहर है ना उसको अंदर ले आती है। उसको सागर की लहर कोई बिछड़ती है क्या? तो तुम गई हो, जो बाबा से बिछड़े हुए बच्चे दूर दूर देशों में चले गए ना, उनको बाबा के पास ले जाने के लिए गई हो ना, तो तभी अभी इसलिए कहां पर भी अभी तो कितने देशों में एक साल में पता नहीं कम, कभी कभी तो एक साल में 8 देशों में भी जाने का होता है, 12 देशों में भी जाने का होता है। तो ये बाबा की लहर है जो है, जो बाबा के बिछड़े हुए बच्चे हैं वो वापस आ रहे हैं, उनको ले जाने के लिए वो जो घोड़े दूर दूर भेजे थे, यज्ञ रचा था तो घोड़े छोड़े थे। तो वो बाबा के बच्चे जाके दौड़ के, तो अभी लगता है कि चलो हंस की सवारी, विद्वानों की सेवा भी हुई, ऋषिकेश में सेंटर खोला, हरिद्वार में सेंटर खोला, परंतु विद्वान पंडित आए हुए भी थे, सेवा उनकी भी हुई। और अभी फिर है ड्रामा अनुसार, अभी वर्तमान समय जर्मनी में है, तो लुफ्ट हंसा नाम ही है प्लेन का, तो मैं कहती हूँ अभी हंस पर बैठी हूँ। भाई घोड़े की सवारी की, हाथी की सवारी की, शेर की सवारी की, अभी हंस की सवारी कर ले, उड़ते ही रहते हैं ना हमेशा। तो बाबा के वरदानों से पल रहे हैं, बाबा के वरदानों से चल रहे हैं, परिवार की सने शुभ भावनाओं से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए क्या करना है, जो मिला है वो दूसरों को देना है। ओम शांति।
जी।